आज है 25 अक्टूबर दिन बुधवार। सभी सुनने वालों को राजेश जोशी का नमस्कार। केंद्रीय चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनावों की घोषणा की। मतदान 9 और 14 दिसंबर को होगा। फिजूल खर्ची पर रोक लगाई जाएगी।
फॉर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड फॉर ईज ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस।
शी जिनपिंग की सत्ता पर पकड़ मजबूत हुई। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने उनके उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं की। आज फिर शुरू हो रहा है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम दुनिया जहान। आज चर्चा जापान की, जहां जल्दी चुनाव करवा के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अपने विरोधियों को परास्त किया।
मिस्टर आबे के खिलाफ कोई ऐसा लीडर था ही नहीं पार्टी में जिसकी जरूरत हो के इनके सामने खड़े रहने की।
ये सब विश्व समाचारों के बाद।
बीबीसी समाचार कुलदीप मिश्र से। चुनाव आयोग ने गुजरात में विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी है। प्रदेश में 9 और 14 दिसंबर को मतदान कराए जाएंगे और 18 दिसंबर को मतगणना होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त अचल कुमार ज्योति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुल 182 सीटों के लिए दो चरणों में चुनाव करवाए जाएंगे। केन्या के चुनाव आयोग के वकीलों ने कहा है कि गुरुवार को तय कार्यक्रम के तहत ही दोबारा राष्ट्रपति चुनाव होंगे। इस मामले पर हुई विशेष सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के जज पर्याप्त संख्या में नहीं पहुंचे। मुख्य न्यायाधीश डेविड मरागा ने कहा कि 7 में से सिर्फ 2 जज इस सुनवाई के लिए उपलब्ध थे, जबकि कम से कम 5 जजों की उपस्थिति जरूरी थी। उप मुख्य न्यायाधीश इसलिए नहीं पहुंच पाई क्योंकि बीती रात उनकी कार और अंगरक्षक पर हमला हुआ था। वहीं विपक्ष के वकील का कहना है कि जजों की अनुपस्थिति उन्हें धमकी दिए जाने का प्रमाण है। विपक्ष के वकील जेम्स ओरेंगो ने कहा, अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखने वाले 2 जज यहां नहीं पहुंचे और जाहिर है कि कल उप मुख्य न्यायाधीश के साथ जो हुआ वह हादसा नहीं था, बल्कि उन्हें धमकी देने की कोशिश की गई ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वो सुनवाई के लिए ना पहुंचे। ये थे विपक्ष के वकील जेम्स ओरेंगो के शब्द। भारत यात्रा पर आए अमरीकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने कहा है कि आतंकी समूह पाकिस्तान की स्थिरता और सुरक्षा के लिए खतरा हैं। नई दिल्ली में अपनी भारतीय समकक्ष सुषमा स्वराज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि असुरक्षा किसी के हित में नहीं है और मंगलवार को उन्होंने पाकिस्तानी नेताओं से हुई बातचीत में अमरीका की उम्मीदें साझा कर दी थीं। सुषमा स्वराज ने कहा कि दिसंबर में अफगानिस्तान मसले पर अमरीका और अफगानिस्तान से बात करने के लिए भारत राजी हो गया है। हफ्ते भर पहले टिलरसन ने अमरीका में कहा था कि वे आने वाले समय में भारत से सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों पर यूरोपीय संसद की बहस इसी संस्था के भीतर के उदाहरणों पर हुई चर्चा के साथ खत्म हो गई। कई महिलाओं ने सोशल मीडिया पर चर्चित रहे हैशटैग #MeToo के पोस्टर हाथों में ले रखे थे। एक संसदीय सहयोगी ने बीबीसी को बताया कि उनके पास एक डायरी है जिसमें बीते 3 साल में उनकी सहकर्मियों के साथ हुई करीब 50 कथित ऐसी घटनाएं दर्ज हैं। स्पेन की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की इराक से गार्सिया पेरेज ने कहा कि शिकायतों की जाँच करने वाला यूरोपीय संसद का सिस्टम कारगर नहीं है और उन्होंने बाहर से मदद की अपील की। समाचार वेबसाइट पॉलिटिको की एक पड़ताल में यूरोपीय संघ के भीतर ही ऐसे दर्जनों आरोप सामने आए थे। पॉलिटिको से जुड़े रयान हीथ कहते हैं,
यह पूरी तरह सिस्टम का ही मसला है। बीते 4 दिनों में हमने यूरोपीय संघ के भीतर और उससे जुड़े 138 आरोपों पर बात की है। हाँ, हम हर आरोप की स्वतंत्र पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन पर भरोसा न करने का हमारे पास कोई कारण नहीं है और हमने कुछ से बात भी की और इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसमें महिलाओं के साथ दादागिरी, उनके साथ ज़बरदस्ती से लेकर घायल कर देने वाले बलात्कार भी शामिल हैं। ये थे रयान हीथ के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। चीन ने अपनी पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए शी जिनपिंग का उत्तराधिकारी घोषित किए बिना ही अपनी नई वरिष्ठ नेतृत्व समिति की घोषणा कर दी है। इससे अगले 5 सालों के लिए चीन में शी जिनपिंग की स्थिति और मजबूत हुई है। साथ ही 7 सदस्यीय पोलित ब्यूरो स्थायी समिति के 5 नए सदस्य चुन लिए गए हैं। ये चीन की सबसे शक्तिशाली कमेटी है। बीबीसी ने ईरान में अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों पर मुकदमे दर्ज किए जाने के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र से शिकायत की है। ईरानी प्रशासन ने बीबीसी फारसी के 152 कर्मचारियों, पूर्व कर्मचारियों और सहयोगियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में आपराधिक जांच शुरू की है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिनभर। मैं हूं राजेश जोशी। आप इस कार्यक्रम को फेसबुक और अपने मोबाइल फोन पर लाइव सुन सकते हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग ने आखिरकार गुजरात विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी है। राज्य की 182 सीटों के लिए 9 और 14 दिसंबर को मतदान होगा और 18 दिसंबर को मतगणना होगी। आप जानते ही हैं कि चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश में चुनावों की घोषणा पहले कर दी, लेकिन तब गुजरात के चुनावों की तारीख का ऐलान नहीं किया गया। इसके लिए विपक्ष ने चुनाव आयोग की कड़ी आलोचना की थी, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त अचल कुमार ज्योति ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस देरी इसलिए हुई क्योंकि चुनाव के कारण बाढ़ राहत के काम में बाधा न आए। दिल्ली से हमारे संवाददाता जुबैर अहमद की रिपोर्ट।
मुख्य चुनाव आयुक्त अचल कुमार ज्योति ने मीडिया के सामने गुजरात विधानसभा के चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हुए कहा कि चुनाव की तारीखों के ऐलान में देरी का कारण ये था कि राज्य में बाढ़ के राहत के काम में बाधा न आए। इससे पहले चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश के लिए चुनाव की तारीखों की घोषणा की थी, लेकिन गुजरात के लिए तारीखों का ऐलान नहीं किया गया था। गुजरात के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा न करने को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए थे। उस समय कांग्रेस और दूसरे आलोचकों का कहना था कि इससे बीजेपी को सीधा फायदा पहुंचेगा, क्योंकि आचार संहिता लागू न होने की सूरत में मौजूदा सत्ता पार्टी वहां वोटरों के लिए लुभाने वाले वादे कर सकती है। गुजरात में मुकाबला सीधा भाजपा और कांग्रेस के बीच होगा। भाजपा राज्य में 1995 से लगातार चुनाव जीतती आ रही है। 2012 के चुनाव में भाजपा को 116 सीटें मिली थीं, जबकि कांग्रेस को 60। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव में काले धन की रोकथाम के लिए कई कदम उठाए गए हैं।
फॉर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड फॉर ईज ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस द कैंडिडेट्स वुड बी रिक्वायर्ड।
अधिक पारदर्शिता और चुनाव खर्चों की निगरानी के लिए उम्मीदवारों को अलग से बैंक अकाउंट खोलना होगा और चुनाव के लिए पैसे इसी बैंक अकाउंट से खर्च करने पड़ेंगे। और जहां तक ये सवाल कि एक उम्मीदवार चुनाव प्रचार में कितने पैसे खर्च कर सकता है, तो वो 28 लाख रुपए से अधिक नहीं खर्च कर सकता।
मुख्य चुनाव आयुक्त अचल कुमार ज्योति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुल 182 सीटों के लिए 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण में 89 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 9 दिसंबर को मतदान होगा। पहले चरण के लिए 21 नवंबर तक नामांकन किया जा सकता है, जबकि 24 नवंबर तक नामांकन वापस लिया जा सकता है। दूसरे चरण में 14 जिलों के 93 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होंगे, जिसके लिए 14 दिसंबर को मतदान कराए जाएंगे। दूसरे चरण के लिए 27 नवंबर तक नामांकन किया जा सकता है, जबकि 30 नवंबर तक इसे वापस लिया जा सकता है। चुनाव आयोग का कहना है कि सभी पोलिंग बूथों में वोटरों के लिए सहायकों को नियुक्त किया जाएगा। संवेदनशील इलाकों में वीडियोग्राफी भी होगी और पुलिस पर सही तरीके से चुनाव करवाने की जिम्मेदारी होगी। चुनावों पर निगरानी रखने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड की तैनाती होगी, जो GPS के जरिए जुड़े रहेंगे। साथ ही पेड न्यूज़ को दूर रखने के लिए अब 3 स्तरीय जाँच की प्रक्रिया रखी गई है, जिसके लिए प्री सर्टिफिकेशन करवाना ज़रूरी होगा। जुबैर अहमद, BBC दिल्ली।
केंद्रीय चुनाव आयोग ने 12 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी थी, पर गुजरात के बारे में सिर्फ इतना कहा था कि वहां दिसंबर तक चुनाव करवाए जाएंगे। विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाए हैं कि इससे भारतीय जनता पार्टी को राज्य में कई परियोजनाओं की घोषणा करने का मौका मिल गया। आइए जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश चुनाव की घोषणा के बाद से गुजरात के लिए सरकार ने कितनी योजनाओं का ऐलान किया। जानकारी दे रहे हैं दिलनवाज पाशा और गुरप्रीत कौर।
किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने 16 अक्टूबर को किसानों को 3 लाख रुपए तक का कर्ज बिना ब्याज के देने का ऐलान किया था, जिससे सरकार पर 700 करोड़ रुपए का भार पड़ने का अनुमान है। ड्रिप सिंचाई के उपकरणों पर 18% GST का पूरा भार सरकार उठाएगी। इससे सरकार पर 77.64 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा।
सरकार ने पाटीदारों पर भी डोरे डाले हैं और गुजरात सरकार ने पाटीदार आंदोलन के दौरान पटेल समुदाय के लोगों पर दर्ज किए मुकदमे खत्म करने का फैसला लिया है। पाटीदार समुदाय से जुड़े ओमिया माताजी संस्था को ऊंझा में पर्यटन सेवाओं के विकास के लिए 8.75 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है।
महिलाओं को रिझाने के लिए माँ वात्सल्य योजना के लाभार्थियों की आय की सीमा 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी गई है। आशा कार्यकर्ताओं का वेतन 50% बढ़ा दिया गया है।
सरकारी और ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन भी बढ़ाए गए हैं। उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल ने नगरपालिका कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का फायदा और 113 आईटीआई के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी और साथ ही सहायक शिक्षकों का वेतन 10,500 रूपए प्रति महीने से बढ़ाकर 16,222 रूपए प्रति महीने किया गया है। विद्या सहायकों का वेतन 16,500 से बढ़ाकर 25,000 रूपए किया गया है।
यही नहीं, सरकार ने कई बड़ी योजनाओं का ऐलान भी किया है। मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने 16 अक्टूबर को 900 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का उद्घाटन किया था। गुजरात सरकार ने अहमदाबाद शहर के लिए 6,578 करोड़ रुपए लागत की मेट्रो प्रोजेक्ट के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी वडोदरा यात्रा के दौरान 100 करोड़ रुपए के सिटी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, 160 करोड़ की लागत से बनने वाले ट्रांसपोर्ट हब प्रोजेक्ट, 125 करोड़ की जनमहल सिटी ट्रांसपोर्ट हब योजना, 267 करोड़ की लागत से बनने वाले वेस्ट टू एनर्जी सेंटर जैसी योजनाओं का या शिलान्यास किया या घोषणा की।
गुजरात चुनावों की घोषणा से पहले की गई लोकलुभावन योजनाओं का ऐलान, जानकारी दे रही थी गुरप्रीत कौर और दिलनवाज पाशा। और देश के बाद अब एक नजर दुनिया पर। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस संपन्न हो गई है और राष्ट्रपति शी जिनपिंग को फिर से 5 साल के लिए नेता चुन लिया गया है, पर इस बार परंपरा से हटकर जिनपिंग के उत्तराधिकारी के नाम की घोषणा नहीं की गई है। इसे समझने के लिए बात करेंगे बीजिंग में वरिष्ठ पत्रकार अतुल अनेजा से, मगर पहले बीबीसी संवाददाताओं की रिपोर्टों का सार सुनिए मोहनलाल शर्मा से।
चीन ने अपनी पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए शी जिनपिंग का उत्तराधिकारी घोषित किए बिना अपनी नई वरिष्ठ नेतृत्व समिति की घोषणा कर दी है। इससे अगले 5 सालों के लिए चीन में शी जिनपिंग की स्थिति और मजबूत हुई है। साथ ही 7 सदस्यीय पोलित ब्यूरो स्थायी समिति के 5 नए सदस्य चुन लिए गए हैं। ये चीन की सबसे शक्तिशाली समिति है। सदस्यों की घोषणा बीजिंग के ग्रेट हॉल में हुई। 7 सदस्यों में 64 वर्षीय जिनपिंग के अलावा 62 वर्षीय ली कचियांग ही ऐसे सदस्य हैं जो कि आगे भी बने रहेंगे। इस महत्वपूर्ण फैसले पर शी जिनपिंग ने कहा, श्री जिनपिंग कह रहे थे, हम लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी की 19वीं कांग्रेस में एक नए केंद्रीय नेतृत्व का चयन किया है। मुझे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन का महासचिव फिर से चुना गया है। ये न केवल मेरे कामों पर मुहर है, बल्कि इससे मेरी इच्छा शक्ति को और ताकत मिली है। ये थे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शब्द। नए सदस्यों में 62 वर्षीय वाइस प्रीमियर वांग वांग को चीन का एग्जीक्यूटिव वाइस प्रीमियर नियुक्त किया गया है। शंघाई में पार्टी सचिव रहे 63 साल के हा जंग को चाइनीज पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व दिया गया है। कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस सीपीसी के खत्म होने के बाद स्टैंडिंग कमेटी और 25 सदस्यीय पोलित ब्यूरो की घोषणा की जाती है। सीपीसी शक्तिशाली सेंट्रल कमेटी का चुनाव करती है। सेंट्रल कमेटी में करीब 200 सदस्य होते हैं जो कि साल में 2 बार मिलते हैं। पार्टी ने मंगलवार को शी जिनपिंग के 5 साल के दूसरे कार्यकाल को मंजूरी दी थी और उनकी विचारधारा को संविधान में जगह दी थी। इसे शी जिनपिंग थॉट कहा जा रहा है। इसमें शी को चीन के पहले कम्युनिस्ट नेता और संस्थापक माओ से तुंग के बराबर दर्जा दिया गया है। कम्युनिस्ट पार्टी की प्रवक्ता ने कहा, कांग्रेस में सर्वसम्मति से कम्युनिस्ट पार्टी के संविधान में शी जिनपिंग थॉट को शामिल करने का फैसला किया गया है। शी जिनपिंग का थॉट नए युग में चीनी तेवर के साथ समाजवाद है। शी जिनपिंग की विचारधारा को सर्वसम्मति से संविधान में शामिल होने से उनकी देश पर पकड़ और मजबूत हो गई है। अब किसी के लिए उन्हें चुनौती देना आसान नहीं होगा। पहली नजर में शी जिनपिंग थॉट बहुत अस्पष्ट लग सकता है, लेकिन इससे कम्युनिस्ट आदर्शों का पता चलता है जिनका शी अपने शासन के दौरान हमेशा समर्थन करते रहे हैं।
ये रिपोर्ट आपने सुनी मोहनलाल शर्मा से। जैसा कि आपने सुना जी, शी जिनपिंग का ओहदा अब संवैधानिक तौर पर चेयरमैन माओ त्से-तुंग के बराबर कर दिया गया है। जिनपिंग के सामने क्या चुनौतियां हैं और वो अपनी योजनाओं को कैसे क्रियान्वित करेंगे, बीजिंग में द हिंदू अखबार के संवाददाता अतुल अनेजा से हमारी सहयोगी मानसी दास ने यही सवाल किया।
इसका जो मुझे लगता है कि अब शी जिनपिंग के पास दो काम है, दो बेसिकली स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जिसको कहें। एक तो कि चाइना को एक मॉडरेटली प्रॉस्परस कंट्री के रूप में उसकी ट्रांजिशन करनी है जो 2021 तक होनी है, जब 100 साल पूरे होते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की फॉर्मेशन के, और उसके बाद उसको कंसोलिडेट करना है, मतलब 2020-21 से लेकर 2035 तक। ये जो मॉडरेटली प्रॉस्परस कंट्री की भी एक परिभाषा है कि जो GDP था चाइना का 2010 तक 10 में, उसको डबल करना है 2020 तक। फिर उसके बाद उसकी कंसोलिडेशन है मॉडरेटली प्रॉस्परस की 2035 तक, और फिर एक फाइनल स्टेज आती है 2035 से लेकर 2050 तक, जिसे एडवांस सोशलिस्ट कंट्री सबसे बड़ी शक्ति के रूप में हर तरह से, कल्चर में, इकोलॉजी में, एनवायरमेंटल में, मिलिट्री में सबसे बड़ी शक्ति उभर के चाइना आएगा 2050 तक। ये एक रोड मैप है।
तो इस योजना को शी जिनपिंग लागू कैसे करेंगे?
तो वो कैसे क्या उसका जरिया, रोड मैप क्या होगा, वो भी शी जिनपिंग ने बताया है। वो है कि जैसे आपने देखा था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, इस कॉन्फ्रेंस से पहले शी जिनपिंग ने ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट किया था उस समय में जब डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका जैसे हैं ग्लोबलाइजेशन से पीछे हट रहे हैं, प्रोटेक्शनिज्म आ रहा है और आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं। तो चाइना ने अनाउंस कर दिया कि वो ग्लोबलाइजेशन का एक तरह से लीडर बनेगा, लेकिन ग्लोबलाइजेशन अलग तरीके से होगी, इंक्लूसिव ग्लोबलाइजेशन होगी, सस्टेनेबल ग्लोबलाइजेशन होगी, उस तरह से नहीं जैसे अब तक चल के आ रही थी। अगर ग्लोबलाइजेशन का, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में सबसे आगे लीड अगर चाइना लेगा तो वो किस तरह से लेगा, उसमें फिर उस संदर्भ में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है, जो मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन है सेंट्रल एशिया, सेंट्रल यूरोप से लेकर अफ्रीका तक की, और एशिया को बीच में साथ ऑफकोर्स जोड़ा गया है, तो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसका एक मैरिटाइम डायमेंशन भी है। ये एक तरह से कोस्टल डेवलपमेंट कई कंट्री की, इसमें श्रीलंका, मालदीव्स वगैरह ये आ जाते हैं, ग्रीस तक जाता है ये। तो एक बेल्ट एंड रोड उसका एक इंस्ट्रूमेंटेलिटी है जिससे वो चाइना ड्रिवन ग्लोबलाइजेशन आगे जाती है।
चीन में शी जिनपिंग की ताकत बढ़ने से भारत के सामने क्या चुनौतियां पेश आएंगी?
भारत के ऊपर चुनौती ये है कि क्या वो बेल्ट एंड रोड फोरम का, जब चीन और शक्तिशाली इमर्ज करके आ रहा है और 2050 तक का उसका रोड मैप है, और क्या वो जियो इकोनॉमिक थिंकिंग से आगे जाएगा और इसको ज्वाइन करेगा बेल्ट एंड रोड फोरम को और चाइना लेड ग्लोबलाइजेशन को, या एक तरह से रेजिस्ट करेगा और एक तरह से भारत की आइसोलेशन होगी अगर भारत ने इसको रिजेक्ट किया, क्योंकि बाकी के साउथ एशिया के देश, नेबरिंग कंट्रीज और जिसको कोर पार्टनर्स हैं अमेरिका के अलावा, बाकी सब, इवन जापान जो है उसका, और शिंजो आबे ने इलेक्शन से पहले भी कह दिया था कि अगर उसके स्टैंडर्ड सही रहे तो जापान को आपत्ति नहीं होगी। मुझे नहीं लगता भारत के पास ऑप्शन है।
ये थे बीजिंग से वरिष्ठ पत्रकार अतुल अनेजा। दिन भर कार्यक्रम आप BBC हिंदी सेवा से सुन रहे हैं। मैं हूँ राजेश जोशी। आज बुधवार है और आज से हम अपने वायदे के मुताबिक साप्ताहिक कार्यक्रम दुनिया जहान एक बार फिर से शुरू कर रहे हैं। इस बार चर्चा जापान की। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने पिछले महीने समय से पहले चुनाव करवाने का ऐलान किया था। उस वक्त कयास लगाए जा रहे थे कि यह फैसला गलत साबित हो सकता है और आबे को नुकसान उठाना पड़ सकता है, मगर बीते रविवार को जब चुनाव के नतीजे सामने आए, आबे के सत्तारूढ़ गठबंधन ने 2/3 सीटों पर जीत हासिल करके स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया। क्या वजह रही कि आबे को वक्त से पहले चुनाव करवाने पड़े? साथ ही अब जीत हासिल करने के बाद क्या वो शांति संविधान में बदलाव करने के अपने वादे को पूरा कर पाएंगे? दुनिया जहान में आज इन्हीं सवालों की पड़ताल कर रहे हैं आदर्श राठौर।
दुनिया जहां। ये आवाज है जापान के होकाइडो द्वीप पर बजे मिसाइल अलार्म की। इस साल अगस्त और सितंबर में 15 दिनों के अंदर 2 बार ये अलार्म बजे। होकाइडो के आसमान से उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल गुजर रहे थे और नीचे ये अलार्म लोगों में दहशत भर रहे थे। जिस वक्त जापान समेत पूरी दुनिया के लोगों की निगाह उत्तर कोरिया के इन मिसाइल परीक्षणों की तरफ थी, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने समय से पहले चुनाव करवाने का ऐलान कर दिया।
प्योंगयांग ने जापान को डुबोने की धमकी दी है। चुनाव लोकतंत्र की आत्मा होते हैं और उत्तर कोरिया की धमकियों का उन पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए मैं चुनाव करवाकर जनमत चाहता हूं ताकि सरकार उत्तर कोरिया से पैदा हुए खतरे का मुकाबला कर सके।
शिंजो आबे ने चुनाव की घोषणा उस वक्त की थी जब उनकी लोकप्रियता में लगातार गिरावट आ रही थी मगर उत्तर कोरिया के संकट के बीच करवाए गए चुनावों में उन्हें बड़ी कामयाबी मिली। जब वो चुनाव जीत कर आए, उन्होंने फिर से वादा किया कि उत्तर कोरिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मगर क्या ये चुनाव वाकई उत्तर कोरिया के खतरे से निपटने के लिए करवाया गया था? जापान की सोका यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मुकेश विलियम्स कहते हैं,
इन्होंने क्या किया, थोड़ी इसको होशियारी या बुद्धिमानता जिसको कह सकते हैं, कि उनकी जो लोकप्रियता थी वो गिर रही थी। पशु चिकित्सा स्कूल के बारे में जो एक स्कैंडल था उनका, और मोरितो मोगाकुएन के ओसाका में जो सरकार की जमीन सस्ते में बेची, इसके बारे में उन्होंने स्पष्ट तरीके से प्रतिक्रिया नहीं की। 26% लोकप्रियता गिर गई उनकी, मतलब 26% बहुत कम होती है। और तो ये दोनों मुद्दों को लेते हुए जनता के विश्वास को फिर से वापस लाने के लिए इन्होंने ये काम किया।
करप्शन के आरोपों को देखते हुए कयास लगाए जा रहे थे कि शिंजो आबे के लिए वापसी करना मुश्किल हो सकता है, मगर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आए हालात बदलते चले गए। मगर लोकप्रियता गिरने के बावजूद क्या वजह रही कि वो लोगों का विश्वास जीतने में कामयाब रहे? जापान में भारत के राजदूत रहे अर्जुन असरानी बताते हैं,
एक लेडी है जो टोक्यो के गवर्नर है, वो इनके सामने उतरने वाली थी और वो काफी पॉपुलर हो गई थी, तो इसलिए थोड़ा बहुत ऐसे माहौल था कि शायद इनकी जीत इतनी अच्छी तरह से ना हो पाए। और आगे तो पीछे उनको एक साल के बाद तो करना ही था, क्योंकि उनका टर्म ख़त्म हो रहा था, तो उन्होंने जानबूझ के एडवांस कर दिया, क्योंकि उनको ये कॉन्फिडेंस था कि अब आने का इम्कान बेटर है, और एक साल के बाद पता नहीं क्या होता है।
जानकार इस जीत की वजह ये भी मानते हैं कि शिंजो आबे ने चुनाव के दौरान अपना प्रचार अर्थव्यवस्था में सुधार और रोजगार देने पर केंद्रित कर दिया था। साथ ही इन चुनावों में विपक्षी पार्टियां भी एकजुट नहीं थीं। आबे जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तब भी उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। 2006 में 52 साल की उम्र में वो विश्व युद्ध के बाद जापान के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे, मगर एक साल के अंदर ही मुश्किल हालात में उन्हें पद छोड़ना पड़ा था। मगर आबे ने 2012 में फिर वापसी की और अब हाल ही में चुनावों में मिली जीत के बाद शिंजो ने अपनी पार्टी एलडीपी के अधिवेशन में नेता के तौर पर लगातार तीसरी बार 3 साल के लिए चुने जाने की संभावनाएं मजबूत कर ली हैं। अर्जुन असरानी कहते हैं,
उन्हीं के पार्टी में चैलेंज होता है। इलेक्शन तो हर 4 साल होती हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए पार्टी उनको 2 साल के लिए ही चुनती है। फिर पार्टी के अंदरूनी ये इलेक्शन होते हैं कि उनको ही बरार रखें या प्राइम मिनिस्टर बदला जाए। ये मिस्टर आबे के खिलाफ कोई ऐसा लीडर था ही नहीं पार्टी में जो जिसकी जरूरत हो कि इनके सामने खड़े रहने की।
अब हालिया चुनावों के बाद उनके सत्ताधारी गठबंधन के पास संसद में 2/3 बहुमत भी आ गया है। इसके साथ ही शिंजो आबे के लिए जापान में संविधान में संशोधन का रास्ता भी खुल गया है, जिसका जिक्र वो अक्सर करते रहे हैं। जापान का संविधान उसे ना तो सशस्त्र सेना रखने की इजाजत देता है, ना ही अंतर्राष्ट्रीय मसलों को हल करने के लिए ताकत के इस्तेमाल की इजाजत देता है। मगर आबे संविधान में बदलाव करना चाहते हैं। चुनाव जीतने के बाद भी उन्होंने संविधान में संशोधन की बात दोहराई थी।
संविधान में संशोधन को लेकर पहले तो विशेषज्ञों के बीच चर्चा होगी, फिर संसद में इस पर बहस होगी, फिर नागरिक ही फैसला करेंगे। यह बात सबसे महत्वपूर्ण बात है।
जापान में बहुत से लोग मौजूदा संविधान को कब्जे की विरासत के तौर पर देखते हैं, मगर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो दूसरे विश्व युद्ध के खौफ से उबरे नहीं हैं, वो दौर जब पूरा देश तबाह हो गया था। ऐसे में उन्हें लगता है कि संविधान से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, मगर आबे चाहते हैं कि 2020 तक संविधान को बदल लिया जाए। ऐसे में क्या संविधान में संशोधन करना शिंजो आबे के लिए आसान होगा? इस बारे में अर्जुन असरानी कहते हैं,
कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाना बहुत ही मुश्किल है। एक तो पार्लियामेंट में मेजॉरिटी चाहिए, उसके बाद फिर रेफरेंडम होना चाहिए।
शिंजो आबे के पिता शिंतारो विदेश मंत्री रह चुके हैं और उनके दादा नोबुसुके किशी जापान के प्रधानमंत्री थे। आबे के दादा किशी को जापान में एक ऐसे प्रधानमंत्री के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने अमरीका और जापान के बीच रक्षा समझौते का संशोधन किया था। तो क्या संविधान में बदलाव करके आबे अपने दादा की तरह ही कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसे लोग याद रखें? मुकेश विलियम्स कहते हैं, शिंजो आबे के तौर तरीके काफी हद तक उनके दादा जैसे हैं।
अपने दादाजी किसी जो थे वो 1957-58 की राजनीति का पालन शिंजो आबे कर रहे हैं, मुझे लगता है। साम्राज्यवादी, राष्ट्रीय नहीं, कमजोर जनता, राष्ट्र एक प्रणाली है, जनतंत्र उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और प्रचार प्रसार प्रोपेगेंडा इस्तेमाल करना, छवि बनाना, मीडिया का सौदा।
शिंजो आबे के प्रधानमंत्री रहते हुए जापान हालात के मुताबिक अपनी विदेश नीति में बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। जापान में एक बड़ा तबका ये महसूस करने लगा है कि अमेरिका पर ज्यादा वक्त तक निर्भर नहीं रहा जा सकता। हाल ही में जापान के प्रधानमंत्रियों ने भारत के प्रति जो झुकाव रखा है, आबे ने उसे आगे बढ़ाया है।
अमेरिका में ट्रंप साहब आ गए, अब वो कुछ अजीब बातें करते हैं कभी कभी, तो जापानी लोगों को, जापानी सरकार को थोड़ा अभी भय होने लगा है कि शायद अमेरिकन पे इतना 100% भरोसा नहीं रखना चाहिए। और ये भी देखते हैं कि भारत मजबूत देश है, तो भारत ऐसा एक देश है जिसके साथ दोस्ती बनाने में फायदा है।
भारत में तो जापान के साथ बढ़ती करीबी को लेकर उत्साह नजर आता है, मगर जापान के साथ ऐसा नहीं है। वहाँ एक वर्ग ऐसा भी है जिसकी राय में जापान को भारत के करीब आने से नुकसान हुआ है। प्रोफेसर मुकेश विलियम्स बताते हैं,
आगे राजनीति जो है वो भारत के करीब हो रही है, मगर जापान में ये कहते हैं कि इससे जापान का आर्थिक नुकसान हुआ है। जापान जो है चीन का बहुत ही एक बड़ा पार्टनर है।
शिंजो आबे के सामने अब कई चुनौतियां हैं। अपने वादों के मुताबिक युवाओं को रोजगार देना, उत्तर कोरिया के खिलाफ ठोस कदम उठाना और संविधान में संशोधन करना। इनमें सबसे मुश्किल काम है संविधान संशोधन, और अगर वो इसमें कामयाब रहे, संविधान में बदलाव करने वाले वो जापान के पहले प्रधानमंत्री होंगे। मगर इस सबके बीच आबे के सामने उनका स्वास्थ्य भी बड़ी चुनौती है। वो बॉवल डिजीज से जूझ रहे हैं और दवाओं के जरिए उसे काबू कर रहे हैं। मगर फिलहाल शिंजो आबे दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान में सबसे ज्यादा समय तक पद पर बने रहने वाले प्रधानमंत्री बनने की राह पर हैं।
दुनिया जहान प्रस्तुत कर रहे थे आदर्श राठौर। एक लंबे अंतराल के बाद प्रस्तुत इस कार्यक्रम के बारे में आपकी टिप्पणी का हमें इंतजार रहेगा। और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। सबसे पहले खबर क्रिकेट की दुनिया से। पुणे में खेला जा रहा है भारत बनाम न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज का दूसरा मुकाबला। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। न्यूजीलैंड की पारी की बात करें तो भारत ने 9 विकेट लेकर न्यूजीलैंड को 230 रनों में समेट दिया। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हेनरी निकोलस ने जहां 42 रन बनाए, तो वहीं कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने 41 रन बनाए। भारतीय गेंदबाजों में भुवनेश्वर कुमार ने 3 विकेट चटकाए, वहीं हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल ने 1-1 विकेट चटकाए, तो जसप्रीत बुमराह और युजवेंद्र चहल ने 2-2 विकेट लेकर न्यूजीलैंड की पारी को समाप्त किया। वहीं भारत अपनी पारी खेल रहा है। 23 नवंबर से इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया एशेज सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। इस सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। डेविड वार्नर की बल्लेबाजी पर बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ।
डेविड वार्नर बेहद उम्दा खिलाड़ी हैं। ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर उनको आक्रामक ही रहने की जरूरत है और वो रहते हैं, ये अच्छी बात है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो एशेज में अच्छा प्रदर्शन कर हमें बड़ा स्कोर बनाने में मदद करें।
अब खबर टेनिस की दुनिया से। WTA फाइनल्स के ग्रुप स्टेज मुकाबले चल रहे हैं। कल वीनस विलियम्स बनाम गार्बिन मुगुरुजा का मुकाबला होगा। हाल ही में हुए अपने पहले ग्रुप स्टेज मैच में वीनस विलियम्स ने जेलेना ओस्टापेंको को हरा दिया था, तो वहीं गार्बिन मुगुरुजा को कैरोलिना प्लिंसकोवा के हाथ हार का सामना करना पड़ा। गार्बिन मुगुरुजा वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने वीनस विलियम्स को विंबलडन में हराया था, और अब दोनों के बीच WTA फाइनल्स के ग्रुप स्टेज का मुकाबला होगा 26 अक्टूबर यानी कल। और अब खबर हॉकी की। मलेशिया में चल रहे 7वें सुल्तान जौहर कप में भारतीय जूनियर हॉकी टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने यूनाइटेड स्टेट को 22-0 से हराया। खेल की दुनिया से इतना ही, नमस्कार।
और अभी ताज़ा स्कोर आपको बता दें कि भारत 3 विकेट खोकर 154 रनों पर खेल रहा है, और उसे जीतने के लिए 108 गेंदों पर 78 रन चाहिए। फिलहाल दिन भर में इतना ही। आज के कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला शाकिर आलम ने, और फेसबुक के जरिए अब तक इस कार्यक्रम को पहुंचाया रजनीश कुमार ने। हम अपने उन तमाम श्रोताओं से क्षमा मांगते हैं जो फेसबुक पर हमें सुन रहे थे, आज आवाज़ साफ नहीं थी, इसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा। मैं राजेश जोशी अब आपसे विदा लेता हूं, कल सुबह 6:30 बजे एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभरात्रि।